मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 15 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो थोड़ी सी दूसरी खबरें हैं आइए उन पर एक उड़ती उड़ती सी निगाहें डाल लेते हैं। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि 20 तारीख को फिर से एक तरह से सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसमें जहां जहां स्थानों की जो स्थितियां मिलेंगी उसके आधार पर छूट दी जाएगी, राइट। उसमें देखिए कि अखबारों में भी आप पढ़ रहे हैं कि 3 तरह के स्पॉट की बात की जा रही है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि प्री एग्जाम में पूछ लिया जाए और अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो इनफैक्ट आपको जानकारी होनी ही चाहिए एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में। हॉट स्पॉट जहां बहुत ज्यादा मामले हैं, इसके बाद है ऑरेंज जोन, कह लीजिए ऑरेंज जोन जहां मामले काफी कम हैं, मतलब बहुत ही कंट्रोल में है लेकिन हैं, और फिर है ग्रीन जोन जहां के मामले बिल्कुल भी नहीं है, जहां अभी कोरोना वायरस पहुंचा नहीं है और उसके आधार पर वह निर्णय लिया जाए, यह निर्णय लिया जाएगा कि कहां किस तरह की एक्टिविटीज को छूट दी जाए। तो जाहिर है कि जो हॉटस्पॉट होंगे वहां तो छूट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जो ऑरेंज जोन होंगे वहां थोड़ी सी एक्टिविटीज को छूट दे दी जाएगी और जहां ग्रीन जोन है वहां शायद ज्यादा छूट दे दी जाए। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए बात मैंने आपको बताई है। मित्रों आप अखबारों में ये भी पढ़ रहे हैं कि हमारी रबी फसल तैयार हो गई है और किसानों को लेकर के बहुत बड़ी चिंता, मतलब आप देखिए कि 2 वर्ग हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चिंता सरकार व्यक्त कर रही है और समाज भी व्यक्त कर रहा है। एक तो हमारे मजदूर वर्ग जो शहरों में रह रहे थे, काम कर रहे थे और उन्हें अब काम नहीं मिल रहा है और वो सब छोड़ छोड़ करके अपने घरों को जा रहे थे, कुछ लोग अपने घर पहुंच गए, कुछ लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया है, ये बात अलग है कि उनके लिए व्यवस्था की गई है लेकिन स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। और इसी के साथ ही साथ गरीब वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, किसी तरह से रोजाना मजदूरी करके अपना पेट पालता था, अब उसकी मजदूरी खत्म हो गई है तो उनकी कैसे व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के पूरा देश परेशान है। और फिर जो दूसरी परेशानी है वो किसानों को लेकर के है, किसानों के लेकर इस अर्थ में कि उनकी फसल तैयार हो चुकी है, अब वो फसल काटें कैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में, और अगर कटाई हो जाती है तो फिर वे उसे मंडी तक पहुंचाएं कैसे, क्योंकि भारतीय किसानों की स्थिति आपको मालूम है कि वो जैसे ही फसल काटता है वैसे ही मंडी में पहुंचाने लगता है क्योंकि वो बहुत से कर्ज लिए हुए होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है और उसे नगद धन चाहिए होता है। तो अभी जो किसानों की स्थिति है उसको लेकर के सरकार अपने अपने ढंग से निर्णय ले रही है, राज्य सरकारों को निर्णय लेना है। और डेफिनेटली जो इससे पहले मैंने आपको ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की बात बताई है उसमें किसानों को फसल काटने के लिए कोई ना कोई सुविधा तो उपलब्ध कराई ही जाएगी, कुछ ना कुछ छूट तो दी ही जाएगी और बहुत से राज्यों ने इसके लिए छूट दे भी दी है। इसी के तहत अभी मुझे एक बहुत अच्छा आंकड़ा मिला है और मैं चाहता हूं कि इसके बहाने वे आंकड़े आप लोगों के सामने रखूं ताकि हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन का एक परिदृश्य है वह सामने आ जाए। और इनफैक्ट मैं रबी फसल की बात कर रहा हूं तो इसकी शुरुआत में गेहूं के उत्पादन से ही करूंगा और ये आपके मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। इस बार हमारे यहाँ जो गेहूं का उत्पादन है वो पिछले सारे रिकॉर्ड से अधिक होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन इस साल होगा वो लगभग लगभग 10 करोड़ 60 लाख टन तक होने की संभावना है। 10 करोड़ 60 लाख, मोटे तौर पर आप अपने दिमाग में एक डेटा रख लीजिए 10.5 करोड़, ये हमारे यहाँ गेहूं के उत्पादन का आंकड़ा है। पिछले साल 10 करोड़ 10 लाख टन हुआ था, मतलब एक मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं तो एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो खपत है हमारे पूरे देश में जो गेहूं का वो लगभग लगभग 9 करोड़ टन के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल हमारे पास 1.5 करोड़ टन गेहूं सरप्लस होगा और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस गेहूं का निर्यात करेगी और खासकर भारत में जो सरबती गेहूं है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बहुत खरा उतरता है तो हमारे यहाँ की जो सरबती गेहूं है उसकी काफ़ी मांग होती है। हमारे यहाँ जो टोटल गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों उसका 83% गेहूं केवल 5 राज्यों से आता है, केवल 5 राज्यों से 83%, सोच के देखिए। और गेहूं उत्पादक ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। देखिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये तो आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत ही सेंटर रहे हैं और यहां सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। फिर दो और राज्य आ जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक दो डेटा आपको और बताना चाहूंगा, और वह है चावल का आंकड़ा। हम चावल कितना उत्पादित करते हैं दोस्तों? हमारे यहां जो चावल का उत्पादन है वो आप कह लीजिए कि जो गेहूं का उत्पादन है उससे 1 करोड़ टन अधिक है, लगभग लगभग। यानी कि जो चावल का उत्पादन है वो 11.5 करोड़ टन है। 2018-19 का उत्पादन का जो आंकड़ा है वो 11.5 करोड़ टन, ठीक है। अब थोड़ा सा दाल और तिलहन पर एक नजर मार लेते हैं, ये आंकड़े आपके दिमाग में रहने चाहिए, है ना। हमारे यहां जो दालों का उत्पादन होता है वो 2.3 करोड़ टन, यानी कि 2.3 करोड़ टन पल्स दालें और 3.15 करोड़ टन तिलहन, 3.15 करोड़ टन तिलहन। तो इस तरह से चार जो महत्वपूर्ण उत्पाद हमारे यहां के हैं खाद्यान्न के तहत, मैंने आपको बताया है गेहूं, चावल, दालें और तिलहन, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इन्हें समय समय पर दोहराते भी रहें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, जिसे आप SCM के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो राष्ट्रीय आपदा की स्थिति आई है, इसमें लगातार आपको अखबारों में आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चैन के बारे में पढ़ने को मिलता होगा। सप्लाई चैन सरकार के सामने अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो अपने इस सप्लाई के चैन को ठीक ठाक रखे। देख तो सप्लाई की चैन ये है क्या, आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, और खासकर इस उद्देश्य से दे रहा हूं ताकि आप अखबारों में जब इससे संबंधित आर्टिकल पढ़ें तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मुख्य एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी अब हो गया है। अब आप देखिए कि ये सप्लाई चैन है क्या। कोई भी एक वस्तु उत्पादित होती है ना, एक चीज प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप अपने दिमाग में लाइए, पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत कच्चा माल से होगी, रॉ मटेरियल से होगा। यानी कि जो तैयार हो रहा है जो सामान, उसका कोई ना कोई कच्चा माल तो होगा, तो वो कच्चा माल, तो जो कच्चा माल है वहां से आपूर्ति की शुरुआत होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेड को ले लीजिए, आप पाव रोटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पाव रोटी बनाने वाला एक छोटा सा बेकरी है। अब उसको पाव रोटी का प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करनी है, तो उसको इसके लिए आटा चाहिए, गेहूं चाहिए। तो अब ये गेहूं उस बेकरी तक पहुंचे ना, आटा उस तक पहुंचना चाहिए, और ये गेहूं कहां से पहुंचेगा? या तो किसानों से पहुंचेगा, या किसान भी जो गेहूं के व्यापारी हैं उनसे पहुंचेगा। तो जो कच्चा माल है, देखिए वहां से इस चैन की शुरुआत हो जाती है। तो जो ओरिजिनल पॉइंट का क्या हो गया, वो कच्चा माल, और इसके बाद उसका अंतिम छोर क्या है, अंतिम बिंदु क्या है? उसका अंतिम बिंदु आप और हम हैं, यानी कि उपभोक्ता, जो उस वस्तु का उपभोग करेगा, ठीक है। तो कच्चा माल से लेकर के उपभोक्ता तक वह वस्तु पहुंचे, इसके बीच की जितनी भी कड़ियां हैं, जो पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हैं, वो सब के सब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं, पूरी की पूरी श्रृंखला। अब आप देखिए कि इसमें कितनी सारी चीजें शामिल, इसमें एक दो चीज शामिल नहीं है, इसमें ढेर सारी चीजें शामिल हैं। कच्चा माल है, कच्चा माल उत्पादन होना है, ठीक है, कच्चा माल उत्पादित होकर के बकायदे किसी न किसी स्टोर में रखा जाएगा। तो जो संभार तंत्र प्रबंधन है, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वह इसका हिस्सा हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, यानी कि वो जो कच्चा माल है अब वो मशीनों तक पहुंचेगा और उसका निर्माण किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो निर्माण प्रक्रिया है, याद रखिए वो भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक अंग है। अब चलिए वस्तु तैयार हो गई, अब तैयार होने के बाद क्या होगा? अब तैयार होने के बाद आप देखिए कि अब ढेर सारी चेन प्रोसेस शुरू हो जाएंगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर वो सामान पहुंच रहा है किसी थोक होलसेलर के पास, तो होलसेलर आ जाएगा, तो ये मध्यस्थ हो गया, फिर होलसेलर से वो जो सामान है वो पूरा का पूरा सामान रिटेलर तक जाएगा, यानी कि जिसे आप कह लीजिए कि खुदरा व्यापारी तक जाएगा, और जो उपभोक्ता है वो कहाँ पहुंचता है, वो खुदरा व्यापारी तक जाकर के अपने लिए सामान खरीदता है। तो यानी कि अब आप देखिए कि पूरे के पूरे जो चैनल के पार्टनर हैं, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो गया, इसमें चैनल पार्टनर शामिल हो गए पूरे के पूरे, यहां तक कि सेल्स भी शामिल हो गए, और याद रखिए कि कस्टमर भी शामिल हो गए, यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहा है वहां से लेकर के जो कस्टमर तक की पूरी चैन है, ये पूरी की पूरी चैन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। आप कल्पना करके देखिए कि एक सामान जो चेन्नई में उत्पादित हो रहा है और पता लगा कि वहां से उत्पादित होकर के वो कश्मीर पहुंच रहा है, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, पता नहीं कहां कहां से आ रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब तो जब हम आपूर्ति श्रृंखला की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सा कच्चा माल विदेशों से आता है, जैसे दवाइयों के लिए अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बहुत मूलभूत दवाइयाँ हैं जिनके लिए कच्चा माल चाइना से आता है। हमने अपने बॉर्डर सील मान लीजिए कर दिए, तो अब आप कैसे करेंगे, वो कच्चा माल आना बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो पता लगेगा कि कार्गो आ रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम कार्गो को 14 दिन तक जो है ना क्वारंटाइन में रखेंगे और इसके बाद सामान लाएंगे, क्योंकि वस्तु लाना जरूरी है, नहीं तो पता लगा कि वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। और कल्पना करके देखिए कि जब वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो देश की क्या स्थिति होगी, चाहे वो दवाइयों की हो या खाने पीने की वस्तुओं की हो, किसी भी चीज की हो। और अभी जो आप पूरा का पूरा संकट देख रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है, लोग काम पर जाने से मना किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां थम गई हैं, बेचारे ड्राइवर्स अगर ट्रक लेकर के निकल रहे हैं तो जगह जगह पर उन्हें रोका जा रहा है, जो ढाबे हैं वो बंद हो गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कल्पना करके देखिए कि जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, सुनने में पढ़ने में तो बड़ी सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, यहां तक कि नगर निगम कमिश्नर के रूप में जब आपको अपने शहर की ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को देखना पड़ेगा, तो हालत खराब हो जाएगी कि लोगों को बिजली भी मिलती रहे, लोगों को पानी भी मिलता रहे, लोगों के जो घर के कचरे हैं वो भी साफ होते रहें, लोगों तक के घर तक सब्जियां भी पहुंचती रहें, किराना दुकान खुले भी रहे लेकिन किराना दुकान बंद भी रहे, वहां भीड़ न लगने पाए। कल्पना करके देखिए, तो जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है अपने आप में दोस्तों बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये लंबी बहुत है। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में दी है। बेहतर होगा कि अभी जो कुछ भी इसको लेकर के समस्याएं आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, उनके समाधान जिस तरीके से किए जा रहे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये टॉपिक प्रैक्टिकली आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपकी यह जानकारी आपको उस समय भी बहुत मदद पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।